ये तो नहीं है कि मुसलमान के पास कोई ख़ास मैजिक टच है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि सुन्नत वो मैजिक स्टोन है कि जिसको टच कर दें वो चीज़ सोना बन जाए। तो आप फिर सोचिए, आपके मेरे लिए इबादत के लिए तो 24 आवर्स हैं, क्या आप और मैं 24 घंटे नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक जुमला लिख लीजिए, हम 24 आवर हालत नमाज में नहीं रह सकते, कैफियत नमाज में रह सकते हैं। और कैफियत नमाज के खुशू अखबात। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अपनी ज़िंदगी में लाएं, उठने की सुन्नतें, बैठने की सुन्नतें, वॉशरूम में जाने की सुन्नतें, घर से निकलने की दुआएं, और इसका खूबसूरत तरीका दुआएं हैं। अगर आप सिर्फ एक दिन की दुआएं जमा कर लेना तो 25-30 दुआएं। जो बंदा वक्त पे दुआ पढ़ लेता है उसके पास बहुत सारे वज़ायफ़ करने का तो मौका ही नहीं रहता। तो लिहाजा सुन्नत काम करने के लिए बचपन से अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाइए, वॉशरूम में पहले कौन सा पाँव रखना है, फिर कैसे निकलना है, और सो ऑन। आप देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी बहुत स्टेबल होगी। इसके बाद आप सूरत का वो हिस्सा शुरू है जहाँ अम्बिया कराम के किस्से हैं। देखिएगा कि अम्बिया कराम के एक तो हैं किस्से, कससुल अम्बिया कहते हैं उनको, और एक है अम्बाउ रसूल। दोनों का फ़र्क है, जहाँ आएगा मौका बताऊँगी। यहाँ तो किस्से हैं, पीछे भी हमने सूरह यूनुस में पढ़े। ये बार बार क्यों आते हैं? ताकि हम सब अपने अमल को देखें कि पिछले अम्बिया की कौमें झुठलाने की वजह से नाफरमानी का शिकार हो गई, कहीं आज हम लोग तो ऐसे नहीं हो गए। तो आयत 25 से 31 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत थी, वलकद अरसलना नूहन इला कौमी, और अलबत्ता तहकीक हमने भेज दिया नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। क्या उनका पैगाम था? सीधा साधा, कोई लंबे चौड़े बात अपने बारे में नहीं कहते थे। क्या कहा? इन्नी लकुम नज़ीरु मुबीन, मैं तो तुम्हारी तरफ वाज़े तौर पर डराने वाला हूँ। और पैगाम क्या है? अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। अगर आप इस एक पहले किस्से के सारे लफ्ज़ जमा कर लेना तो बाकी अम्बिया कराम की दावत भी यही थी। हर नबी ने हमेशा आकर पहले तो अपना तारुफ क्या कराया? नज़ीरु मुबीन, खुल्लम खुल्ला वार्नर, यानी डराने वाला हूँ, अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा देता हूँ। दूसरी बात, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, दैट इज़ द मेन फैक्टर, बुनियादी नुक्ता दावत का क्या था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। इसको आज हम पढ़ते हैं, या का नाबुदू ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अगली बात, इन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, अगर तुमने नाफरमानी की तो मुझे तुम पर अल्लाह की तरफ से एक पकड़ का डर है। दैट्स इट। अब ये बात तो हो गई, लेकिन वही रिस्पॉन्स देखिए, फ़काल अलमलाऊ, फिर कहा उस कौम के काफिर सरदारों ने कि हम तो आपको अपने जैसा एक आदमी ही देखते हैं, और आपकी पैरवी करने वाले तो बड़े ही गरीब गुरबा और कमज़ोर हैं, और तीसरा एतराज़ यह है कि आपको हमारे ऊपर कोई फजीलत तो नहीं दिख रही, और चौथा एतराज़ क्या था? बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, हमारा तो ख्याल है कि आप झूठे हैं। ज़रा सा सोचिए, बड़े इत्तेफाक से आप लोगों को दर्स देने निकले, बहुत प्यार से जी जा रही हूँ दर्स करने, दावत दूंगी और अल्लाह के दीन की खिदमत है, और आगे से आपको ये चार इल्ज़ाम मिल जाएं, तो फिर आप क्या करेंगी? बैठी रहेंगी? आप कहेंगे आज के बाद मैं इधर नहीं आऊँगी, मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे अंदर है ना इक्विस्टिक है, हम खुद पसंद है, हम बहुत सेंसिटिव हैं। लिख लीजिए, जो अल्लाह के लिए काम करता है वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता। हसास लोग कभी दीन का काम नहीं करते। छोटी छोटी बात पे दुखी होने वाले, जब कौम ने इतना बुरा रिस्पॉन्स दिया, काला या कौमी आ रही तुम इन कुन तो लबई न ते मे रबी, या कौमी ओ माई पीपल, ओ माई पीपल। यहाँ से पता चलता है कि दीन का पैगाम मोहब्बतों से फैलता है। लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, आपको रिस्पॉन्स जैसा भी मिले, आपने उसके मुकाबले में लोगों को प्यार से और मोहब्बत से उस तरफ बुलाते ही रहना है, और साथ ही ये कह दिया कि मेरे पास तो अल्लाह की तरफ से रहमत आई है जो तुमसे छुपी हुई है, क्या मैं ज़बरदस्ती तुमको हिदायत चिपका दूँ और तुम उसको पसंद ही नहीं करते? और देखो, मैं तो तुमसे इस पे कोई माल भी नहीं मांगता, क्योंकि इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है, और मैं नहीं हाँकने वाला ईमान वालों को, क्योंकि वो तो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से। हाँ, मैं देखता हूँ तुमको ऐसी कौम जो जहालत बरतती है, और है मेरी कौम, यानी अगर तुम्हारी खुशी के लिए इन गरीब गुरबा को मैं अपने पास से हटा दूँ तो मुझे बताओ कि फिर मेरी मदद कौन करेगा? अफला तज़क्करून, सोल सर्चिंग क्वेश्चन है, सवाल जवाब हो रहे हैं। वला अकूलु लकुम, और सबसे बड़ी बात है, मैं तुम्हें ये कहता भी नहीं कि मेरे पास तो अल्लाह के बड़े ख़जाने हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं गैब को जानता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ और मैं उन लोगों के बारे में जिनको हकीर जानती हैं तुम्हारी निगाहें, ये बिल्कुल नहीं कहता कि अल्लाह उनको कोई खैर नहीं देगा। और अल्लाह वो जानता है जो इनके सीनों में है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैंने ऐसा किया, इन इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, मैं तो जालिम होगा। आप देखिए, इस पूरे पैराग्राफ से आपको अंबिया कराम का अपने बारे में अकीदा दिख रहा है, कितनी आजी है, कितना इख़बात है। और दूसरी बात है कि दीन में कोई क्लास सिस्टम नहीं है, ये अमीरों की क्लास है, ये गरीबों की क्लास है। अंबिया कराम की दावत को अमूमन माशरे के कमज़ोर तबके ने पहले कबूल किया। क्यों? बहुत सिंपल बात है, जो पैगाम नबियों की तरफ से आता है ना, उसकी चोट पैसे वालों पे, सियासत वालों पे, रुतबे वालों पे पड़ती है। उनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। इसके बरक्स जो गरीब गुरबा रोज़ रोटी रोक कमा कर खा कर और खिला कर सोने वाले, उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अक्सर इस चीज़ को एक मिसाल से समझती हूँ, अभी समझ ले ताकि फिर हमें बाकी अम्बिया के किस्से भी समझ आएँ। अब देखिए कि अमूमन जो बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं ना, उसमें 4 लेन्स होती हैं। बाहर की दुनिया में बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। अब 4 लेन सीधी जा रही हैं, जो सबसे लेफ्ट पे है ना, उसके अंदर सबसे तेज़ चलने वाला चलता है, फिर मिडल वाला ज़रा अगर कम स्पीड है, और जो बिल्कुल ही आखिरी है ना, राइट साइड पे पहली, ये सबसे लो स्पीड वालों के लिए होती है। जिसने भी उस हाईवे से उतरना है ना, वो इधर एग्जिट सारे इस पे होते हैं। अब एक शख्स जिसको अगला एग्जिट लेना है, मिसाल उसको एयरपोर्ट जाना है और एग्जिट आ रहा है, अब वो अगर 4th लेन में ना, तो इंडिकेटर देकर स्पीड कम करके पहले 3rd में आएगा, फिर 2nd में आएगा, फिर 1st में आकर एग्जिट लेगा। और अब जब भी लेन चेंज करेंगे, हादसे का बहुत डर है, पीछे से गाड़ी आ रही थी, टकरा गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बरक्स जो पहले से 1st लेन में है, जो ही उसने एग्जिट लेना, वो क्या करेगा? शायद इंडिकेटर भी ना दे, क्योंकि उसके पीछे सभी ने उधर ही जाना है। बस इस मिसाल को दिल से बांध ले, जहाँ भी अल्लाह की दावत, अल्लाह के दीन की दावत दी जाती है ना, तो जो लोग बैठे होते हैं ना, कुछ बेचारे बड़ी बेसिक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है, बस वो फ़ौरन गलत कामों से एग्जिट ले लेते हैं। जो 1st लेन में, उनकी कुछ और रुकावटें हैं। और जो बेचारे 4th लेन है ना, ये वो सोसाइटी का तबका होता है जिन तक कभी ना दीन गया और पैसे की मुख्तात थी। अब इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। ये हैं वो बेचारे असल में, जिनको आप कह सकते हैं अल मुहाजिरून। ये अपने सोने जागने के औकात से लेकर, पहनने ओढ़ने से लेकर, जीने मरने की एक एक रस्म को छोड़ते हैं। आपको मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता, लेकिन आज भी मुस्लिम दुनिया में ऐसे लोग हैं, बाहर की दुनिया में और यहाँ भी होंगे ऑफ कोर्स। मैं तो जो अपने तजुर्बे से देखती हूँ वही है कि शौहर बीवियों को किसी तौर पे इस्लामिक कपड़े पहनने ही नहीं देते। वो ज़बरदस्ती बीवियों को खूबसूरत सजा संवार कर पार्टीज और महफिलों में लेकर जाते हैं। और उनके नज़दीक अगर शराब का एक आधा घूंट भी ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी डील्स होनी है, बहुत पार्टीज आई हैं, तो भी कोई बुरी बात नहीं। और ऐसी भी महफिलें हैं कि आप शराब तो नहीं पी रहे, लेकिन दूसरे पी रहे हैं, तो आपके सामने भी ग्लास वैसे ही रखा हुआ है, शक्ल भी वैसी है। फिर वो कहते हैं, नहीं, ये एप्पल जूस है, इस पर भी अपने लीमू का एक पीस लगाया, आप पिए, ताकि वो जो पी रहे हैं ना, उनको बुरा ना लगे। असिमिलेट करना। अब मुझे बताइए, अगर ऐसी कोई बहन कुरान सुन लेती है, फिर जो उसके आंसू हैं, फिर वो जो उसकी तकलीफ़ है, तो हज़रत आसिया को याद कर लें। हमेशा दीन देने वाले को लोगों की सहूलत और उनके बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा करीब होना चाहिए। तो अब ये सारी दावत सुनिए, हज़रत नूह ने तो बड़ी लॉजिकल बात की, लेकिन कौम का मुतालबा देखिए, क्या अज़ाब ले आई है हम पे। यानी आयत 32 से 36 में कौम का हज़रत नूह से अज़ाब लाने का मुतालबा। कालू या नूह, कहने लगे, नूह तू तो हमसे बहुत ही झगड़ा करता है, और तू तो है ही बड़ा झगड़ालू, बस ले आ अज़ाब जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू सच्चा है। कहने लगे, मैं इसको नहीं ला सकता मगर अल्लाह के हुक्म से, और अगर अल्लाह ले आए तो तुम उसको आजिज़ नहीं कर सकते, और तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कोई फ़ायदा नहीं देगी अगर मैं तुम्हारा खैर ख्वाह बन जाऊँ। हाँ, बेशक अल्लाह ताला ये इरादा करता है कि वो तुमको ही बहका दे, क्योंकि वो तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यहाँ आप देख रहे हैं क्या बहस मुबासा कर रही है कौम। उजड़ कौमें अपने नबियों का नाम लेके रोती तो हैं, उनके पैदा होने के दिन में जश्न भी मनाती हैं, उनके लिए अपने आप को कुर्बान करने के दावे भी नातों में और बहुत खूबसूरत अंदाज से करती हैं, लेकिन वही नबी जब अपने अपने दौर में उनके सामने मौजूद होते थे, तो कभी कभी इस तरह की मुमारी भी करती थी। अल्लाह ताला को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या कर रहे हैं हज़रत नूह के साथ। अल्लाह ने अजाब भेज दिया। 37 से 40 में अब वो वक्त है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, और ये सूरह हूद वो मुकाम है जहाँ किस्सा कौम नूह सबसे ज़्यादा तफसील से है पूरे कुरान में। इस तरह हर एक किस्सा किसी न किसी सूरत में है, तो अब ज़रा सा इसको, बल्कि आप कह सकते हैं कि हम हज़रत नूह की सीरत पढ़ रहे हैं, जैसे सीरत रसूल है ना नबी सल्लम की, हर नबी की है, तो हज़रत नूह की सीरत यहाँ तरतीब से आपको मिल रही है। वस नाइल फुल का भी आयुनी ना, ए नूह ये कौम बहुत झगड़ती है, ये आपकी बात नहीं समझ रही, और 950 साल हो गए, 950 ईयर्स, अनयूजल वक्त है, इतनी उम्रें होती नहीं हैं। अल्लाह ने दिखा दिया कि दावत के रास्ते में अल्लाह ताला चाहे तो उम्रें भी बढ़ा दे, लेकिन जब कौम पे सारी हुज्जतें तमाम हो गईं और अल्लाह का फैसला अजाब देने का आ गया, तो अल्लाह ने हज़रत नूह से कहा कि आप एक कश्ती बनाइए और मुझसे इन जालिमों के बारे में बात ना कीजिएगा, यानी कि उसको बचा लो इसको बचा लो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ इन्नहुम मुग़रक़ून, ये सब डुबो जाएंगे। हज़रत नूह ने अल्लाह ताला के हुक्म पे वयस नल फुल का वो कश्ती बनाने लगे। अब इमेजिनेशन में लाए, एक बूढ़ा सा शख्स है, इतनी उसकी लंबी उम्र, और बैठ के वो लकड़ी जोड़ के कश्ती बना रहा है। वो कुल्लमा मर्रा अलैहि मलौ मिन कौमी, और जब कभी गुजरते थे उसके करीब से उनकी कौम के सरदार सखीरो मिन्हु, मजाक उड़ाते थे। अलविदाया और नहाया में या तफसीर इब्ने कसीर में पढ़िए, क्या कहते थे, अरे मियाँ साहब ये कश्ती कहाँ चलाओगे, पानी का तो नाम नहीं था, अच्छा ये पहाड़ों में चलाओगे, ये रेगिस्तानों में चलाओगे। हज़रत नूह का जवाब, कहने लगे अगर तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो पर हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे जैसे तुम हमारा उड़ाते हो, अनकरीब तुम खुद ही देख लोगे कि किस पे आता है वो अजाब जो उसको रुसवा करेगा और किस पे ठहरने वाला अजाब उतरता है। यानी बहस नहीं की, मुबाहसा नहीं किया, कहने लगे कि अब देख लेना आने वाले दिनों में क्या होता है। हत्ता इजा जा मरूना, फिर जबकि आ गया हमारा हुक्म, मुराद है कि अजाब का फैसला, वफारत नूर, हदीस में आता है कि सबसे पहले जमीन में से एक पानी का चश्मा फूटा था जो एक सिंबल था कि अब इस कौम पे अल्लाह की पकड़ आने वाली है। कुल नहमिल फीहा मिन कुल्ली ज़ौजैन इस्नैन, हमने कहा कि अब इस कश्ती में सवार कीजिए हर तरह के जोड़े, दो दो वाहलक, और अपने घर वालों को भी सवार कर ले, हाँ मगर उसको नहीं, इल्ला मन सबक अलैहिल कौल, जिस पे हमारी बात साबित हो गई, यानी जो ईमान नहीं लाए उनको इस कश्ती में जगह नहीं मिलेगी, हाँ जो ईमान ले आया आपके साथ उसको ले आइए। और साथ ही बड़ी ही एक रकीक बात है, वमा आमना माहु इल्ला कलील, और नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर थोड़े ही लोग, ज़रा सा इस पे बात कीजिए। आज हम कहते हैं लोग सुनते नहीं, लोगों को शौक नहीं, लोग मानते नहीं, क्या करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तकरीबन 70+ लोगों ने माना, और 950 को अगर आप डिवाइड कर लेना इस फिगर से, तो ऑलमोस्ट आफ्टर हर 12-13 ईयर्स एक बंदा ही मान लाया। आज है हमारा ऐसा हौसला, जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी, इनको यकीन था कि मैं तो बच जाऊँगा, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा दीन एफर्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं है। कोशिश आपने पूरी की है कि नहीं ये आपसे पूछा जाएगा, लेकिन अब नतायज क्या निकले इससे कोई नहीं। अगर रिजल्ट्स पे हमारी कामयाबी होती तो हज़रत नूह तो एक किस्म के नाकाम है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। हम कहते हैं हमने क्लास शुरू की थी फिर लोग ही नहीं आए, फिर रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था फिर चल नहीं सका। देखिए अगर आपको यकीन है कोई एक इंसान भी आपकी वजह से हिदायत पे आ गया, सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इमाम बुखारी जैसा एक शागिर्द अगर क्लास में बैठा हो तो क्या वो अपने उस्तादों के लिए सदका जारिया ना बन गया। तो हेड काउंट नहीं करना और पेशेंस के साथ रहना है। अब हुआ क्या, जब सवारी में बिठाने लगे तो सवारी की दुआ भी आ गई, आयत 41 लिख सकते हैं आप, बहरी सफर की सवारी हो अगर तो उसकी दुआ क्या है, वकालर कबू फीहा, और वो कहने लगे सवार हो जाओ इसमें, बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा। ये रॉक और रे से पढ़ते हैं, ये वाहिद मुकाम है कुरान का, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि हज़रत नूह का दौर है बिल्कुल इंसानियत का चाइल्डहुड, बचपन है, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत नूह के बीच में 10 करन की बात आती है। उस वक्त भी हज़रत नूह क्या कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह। लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पे गौर करें तो इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि इस आयत में इस बात की दलील है कि हर काम शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। आज हम भी तो हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, और इसमें सही मुस्लिम की एक रिवायत भी है 5250 में, आपने फरमाया कि जब रात की तारीकी फैल जाए, या आपने फरमाया कि तुम शाम करो, तो अपने बच्चों को अपने साथ रखो, क्योंकि इस वक्त शयातीन इधर उधर फैल जाते हैं, फिर जब रात की घड़ी गुजर जाए तो फिर चाहो तो छोड़ दो और दरवाज़े बंद कर दो और अल्लाह का नाम लो, क्योंकि शैतान बंद दरवाज़े नहीं खोलता। और अपनी मशकों के मुंह बंद करो और अल्लाह का नाम लो, और अपने बर्तनों को ढक दो और अल्लाह का नाम लो, और नहीं तो बर्तनों पर चौड़ाई के रुख पर कोई चीज़ रख दो और अपने चिराग बुझा दो। एक हदीस में कितने एटिकेट्स हैं रात को सोने के, और सोने के वक्त चीज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें अमल की बातें नोट करें। मगरिब के फौरी बाद खुली जगहों पे बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चों को और फिर बनी सवरी औरतों को और बाल खोली हुई लड़कियों को और लंबे नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाकर घूमते फिरते लोगों को शयातीन पसंद करते हैं। अमूमन आप देखिए कि ये वो वक्त होता है मोस्टली जिस वक्त हम दावतों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, समंदर पे जा रहे हैं, बच्चों को खिलाने लेके जा रहे हैं, अपने बच्चों को इस तरह अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है कि खाने पीने की कोई चीज़ रात को खुली बाहर ना छोड़ें। बेशक हमारे घर आज कितने हाइजीनिक क्यों नहीं है, हमारे घरों में आज कितनी सफाई का एहतमाम क्यों नहीं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि रात को कई मखलूकात बाहर आ जाती हैं। तो हमेशा से ये नियत रखिए कि बर्तन को छुपा कर उसके ऊपर ढक्कन रखिए और चिराग भी बुझा दें, क्योंकि शैतान आग लगवाने का जरिया भी बनते हैं।